गाथा, रूह वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी निक्की, रोजी और रानी। बाल्यकाल के स्मृतियों में अनुभूति की वैसी ही स्थिति रहती है जैसी भीगे वस्त्र में जल की। वह प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, किंतु वस्त्र के शीतल स्पर्श में उसकी उपस्थिति व्यक्त होती रहती है। इन स्मृतियों में और भी विचित्रता है। समय के माप से वे जितनी दूर होती जाती हैं, आत्मीयता के परिमाण में उतनी ही निकट आती जाती हैं। मेरे अतीत बचपन के कोहरे में जो रेखाएं अपने संपूर्ण ममत्व के विविध रंगों में उदय होने लगती हैं, उनके आधारों में तीन ऐसे भी जीव हैं जो मानव समष्टि के सदस्य ना होने पर भी मेरी स्मृति में छपे से हैं। निक्की नेवला, रोजी कुत्ती और रानी घोड़ी। रोजी की जैसे ही आंखें खुली, वैसे ही वह मेरे पांचवें जन्मदिन पर पिताजी के किसी राजकुमार विद्यार्थी द्वारा मुझे उपहार रूप में भेंट कर दी गई। स्वाभाविक ही था कि हम दोनों साथ ही बढ़ते। रोजी मेरे साथ दूध पीती, मेरे खटोले पर सोती, मेरे लकड़ी के घोड़े पर चढ़कर घूमती और मेरे खेलकूद में साथ देती। वस्तुतः मेरे पशु प्रेम का आरंभ रोजी के साहचर्य से माना जा सकता है, जो 13 वर्ष की लंबी अवधि तक अविच्छिन्न रहा। रोजी सफेद थी, किंतु उसके छोटे सुडौल कानों के कोने, पूंछ का सिरा, माथे का मध्य भाग और पंजों का अग्रांश कत्थई रंग का होने के कारण उसमें कत्थई किनारों वाली सफेद साड़ी की शबर रंगीनी का आभास मिलता है। वह छोटी पर तेज टेरियर जाति की कुत्ती थी और कुछ प्रकृति से और कुछ हमारे साहचर्य से श्वान दुर्लभ विशेषताएं उत्पन्न हो जाने के कारण घर में उसे बच्चों के समान ही वात्सल्य मिलता था। हम सबने तो उसे ऐसा साथी मान लिया था जिसके बिना ना कहीं जा सकते थे और ना कुछ खा सकते थे। उस समय पिताजी इंदौर के डेली कॉलेज, जो राजकुमारों का विद्यालय था, के वाइस प्रिंसिपल थे और हम सब छावनी में रहते थे, जहां दूर तक कोई बस्ती ही नहीं थी। हमें पढ़ाने वाले शिक्षक प्रातः और संध्या समय आते थे। इस प्रकार दोपहर का समय हमारे लिए अवकाश का समय था, जिसे हम अति व्यस्तता में बिताते थे। सबसे छोटा भाई तो हमारी व्यस्तता में साथ देने के लिए बहुत छोटा था, परंतु मैं, मुझसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई दोपहर भर बया चिड़ियों के घोंसले तोड़ते, बबूल की सूखी और बीजों के कारण बजने वाली छिमियां बीनते घूमते रहते। ग्रीष्म में जब हवा ठहर सी जाती थी, वर्षा से जब वातावरण गलकर बरसने सा लगता था और शीत में जब समय जम सा जाता था, हमारी व्यस्तता एक सी क्रियाशील रहती थी। घूमते घूमते थक जाने पर हमारा प्रिय विश्रामालय एक आम के वृक्ष से घिरा सूखा पोखर था, जिसका ऊंचा कगार पेड़ों की छाया में 8-8 फुट और खुली धूप में 4-5 फुट के लगभग गहरा था। कई आम के पेड़ों की शाखाएं लंबी नीची और सूखे पोखर पर झूलती सी थी। सूखी पत्तियों ने झड़ झड़ कर सूखी गहराई को कई फुट भर भी डाला था। हम तीनों डाल पर बैठकर झूलते रहते या रॉबिन्सन क्रूसो के समान अपने समतल समुद्र के गहरे टापू की सीमाएं नापते रहते। घूमने के क्रम में यदि हमें कोई मकोई का पौधा या करौंदे की झड़ी फूली फली मिल जाती तो नंदनवन की प्रतीति होने लगती। हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ देती। जब हम डाल पर बैठकर झूलते रहते, वह कगार के सिरे पर हमारे पैरों के नीचे बैठी कूदने के आदेश की आतुर प्रतीक्षा करती रहती। जब हम पोखर की परिक्रमा करते तब वह हमारे आगे आगे मानो राह दिखाने के लिए दौड़ती, और जब हम मकोई और करौंदे एकत्र करने लगते तब वह किसी झाड़ी की छाया में बड़े विरक्त भाव से बैठी रहती। गर्मी के दिनों में आम के पेड़ों से छोटी बड़ी अंबिया हवा के झोंके से नीचे गिरती रहती और उनके गिरने के स्वर के साथ रोजी सूखे पोखर में कूदती और पत्तियों के सरसराहट भरे समुद्र में से उसे खोज लाती। कच्ची कैरी की चेपी लग जाने से बेचारी का गुलाबी छोटा मुंह धबीला हो जाता, परंतु वह इस खोज कार्य से विरत ना होती। दोपहर को पिताजी कॉलेज में रहते और माँ घर के कार्य व छोटे भाई की देखभाल में व्यस्त रहती। रामा बाजार चला जाता और कल्लू की माँ या तो सोती या मांझ मांझ कर बर्तन चमकाने में दत्त चित रहती। वे सब समझते कि हम लोग या तो अपने कमरे में सो रहे हैं या पढ़ लिख रहे हैं, पर हम कुछ ऊंची खिड़की की राह से पहले रोजी को उतार देते और फिर एक एक करके तीनों बाहर बगीचे में उतर कर करौंदे की झाड़ियों में छिपते छिपते अपने उसी सूने मुक्तिलोक में पहुंच जाते। तीन में से किसी को भी कमरे में छोड़ना शंका से रहित नहीं था, क्योंकि वह बिस्कुट पेड़ा बर्फी आदि किसी उत्कोच के लोभ में मुखबिर बन सकता था। परिणामतः तीनों का जाना अनिवार्य था। रोजी भी हमारे निर्बंध संप्रदाय में दीक्षित हो चुकी थी, अतः वह भी हमारे साथ आती थी। हमारे अभियान के रहस्य को वह इतना अधिक समझ गई थी कि दोपहर होते ही खिड़की से कूदने को आकुल होने लगती और खिड़की से उतार दिए जाने पर नीचे बैठकर मनोयोग पूर्वक हमारा उतरना देखती रहती। कभी खिड़की से कूदते समय हम में से कोई उसी के ऊपर गिर पड़ता था, पर वह ची करना भी नियम विरुद्ध मानती थी। ऐसे ही एक स्वच्छंद विचरण के उपरांत जब हम आम की डाल पर झूल झूल कर अपने संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे तब एक आम गिरने का शब्द हुआ और रोजी नीचे कूदी। कुछ देर तक वह पत्तियों में ना जाने क्या खोजती रही, फिर हमने आश्चर्य से देखा कि वह मुंह में किसी जीव को दबाए हुए ऊपर आ रही है। वस्तुतः उस सूखे पोखर के नीचे कगार में बिल बनाकर किसी नकुल दंपति ने प्रजापति के कार्य में सक्रिय सहयोग देना आरंभ किया था। उनकी नकुल सृष्टि का कोई लघु परंतु हमारे ही समान अराजकतावादी सदस्य अपने सृजनकर्ताओं की दृष्टि बचाकर सूखी पत्तियों के समुद्र में ऊपर तैर आया था। पत्तियों से छोटा मुंह निकालकर उसने जैसे ही बाहर के संसार पर विस्मित दृष्टि डाली, वैसे ही अपने आप को रोजी के छोटे और अंधेर मुख विवर में पाया। निरंतर बिना दांत चुभाए कच्ची अंबिया लाते लाते रोजी इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि उस कुलबुलाते जीव को भी सुरक्षित हम तक ले आई। आकार में वह गिलहरी से बड़ा न था, पर आकृति में स्पष्ट अंतर था। भूरा चमकीला रंग, काली कत्थई आंखें, नर्म नर्म पंजे, गुलाबी नन्हा मुंह, रो में छिपे हुए नन्ही नन्ही सीपियों से कान, सब कुछ देखकर हमें वह जीवित नन्हा खिलौना सा जान पड़ा। रोजी ने उसे हौले से पकड़ा था, परंतु बचने के संघर्ष में उसके कुछ खरोंच लग ही गई थी। चोट से अधिक भय से वह निश्चेष्ट था। उसे पाकर हम सब इतने प्रसन्न हुए कि अपने घोंसले, चिकने पत्थर, जंगली कनेर के फूल आदि का विचित्र संग्रहालय छोड़कर उसे लिए हुए घर की ओर भागे। उस समय की उत्तेजना में हम अपने अज्ञात भ्रमण की बात भी भूल गए, परंतु माँ ने यह नहीं पूछा कि वह छोटा जीव हमें कहाँ और कैसे मिला। उन्होंने जीव जंतुओं को ना सताने के संबंध में लंबा उपदेश देने के उपरांत उसे उसके नकुल माता पिता के पास बिल में रखाने का आदेश दिया। हमें बेचारे नकुल शिशु से बड़ी सहानुभूति हुई। छोटे से बिल में रात दिन पड़े माता पिता के सामने बैठे रहने में जो कष्ट बच्चे को हो सकता है, उसका हम अनुमान कर सकते थे। यदि एक छोटे कमरे में हमें सामने बैठाकर बाबूजी रात दिन पढ़ाते रहें और माँ सिलाई बुनाई में लगी रहे, तो हमारा क्या हाल होगा? ऐसी ही कोई अप्रिय स्थिति बिल में रही होगी, नहीं तो यह इतना छोटा बच्चा भागता ही क्यों? अतः नकुल शिशु के बिल और बिल निवासी माता पिता की खोज में हम अनिच्छा पूर्वक गए और खोज में असफल होकर निराश से अधिक प्रसन्न लौटे। अब तो उस लघु प्राणी का हमारे अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं रहा। प्रसन्नता पूर्वक हमने अपने खिलौनों के छोटे बक्स को खाली कर उसमें रुई और रेशमी रुमाल बिछाया, फिर बहुत अनुनय विनय कर और उसके सब आदेश मानने का वचन देकर रामा को उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने के लिए राजी किया। इस प्रकार हमारे लघु परिवार में एक लघुतम सदस्य सम्मिलित हुआ। जब रामा की सतर्क देखरेख में वह कुछ दिनों में स्वस्थ और पुष्ट होकर हमारा समझदार साथी हो गया, तब हम रामा को दिए वचन भूलकर फिर पूर्वतः अराजकताकारी बन गए। माँ ने उसका नाम रखा नकुल, जो उसकी जातिवाचक संज्ञा का तत्सम रूप था, किंतु न जाने संक्षिप्तीकरण की किस प्रवृत्ति के कारण हम उसे निक्की पुकारने लगे। पालने की दृष्टि से नेवला बहुत स्नेही और अनुशासित जीव है। गिलहरी के खाने योग्य कीट, पतंग, फल, फूल आदि कोई भी खाद्य खाकर वह अपने पालने वाले के साथ 24 घंटे रह सकता है। जेब में, कंधे पर, आस्तीन में, बालों में, जहां कहीं उसे बैठा दिया जाए, वह शांत स्थिर भाव से बैठकर अपनी छोटी पर सतर्क आंखों से चारों ओर की स्थिति देखता परखता रहता था। निक्की मेरे पास ही रहता था। उस समय हमारे परिवार में छोटी लड़कियों की वेशभूषा में गोटे पट्टे से सजा गरारा, कुर्ता और दुपट्टा विशेष महत्व रखता था, जिसमें वे मध्यकालीन बेगमों के लघु संस्करण जान पड़ती थी। कभी कभी प्रगतिशीलता का प्रमाण देने के लिए उन्हें फ्रॉक पहनाए जाते थे, जिसके कॉलर, लेस, झालर आदि के घटाटोप में वे क्वीन विक्टोरिया की संगीनियों का भ्रम उत्पन्न करके मानो पूर्व पश्चिम दोनों का प्रतिनिधित्व करती थी। हमारे जूते तक पूर्व पश्चिम में विभाजित थे। पूर्व के वेश के साथ छोटी, हल्की और जरी के काम वाली जूतियां पहनकर हम घिसटते हुए चलते थे। पश्चिमी वेश के साथ घुटने के ऊपर तक काले या सफेद मोजे चढ़ाकर, ऊंची एड़ी वाले और तस्मे से कसे बंधे जूते पहनकर डगमगाते हुए चलते थे। हमारे मन और पैर दोनों ही इस संचरण पद्धति से विद्रोह करते थे, क्योंकि वह ना हमें करौंदे की झाड़ियां लांगने देती और ना दौड़ने। अतः हम अलमारी में दोनों प्रकार के पदत्राणों को छिपाकर खिड़की से कूदते और नंगे पैर कंकड़ पत्थरों पर दौड़ लगाते थे। निक्की या तो मेरे दुपट्टे की चुन्नट में छिपा हुआ झूलता रहता या गर्दन के पीछे चोटी में छिपकर बैठता और कान के पास नन्हा मुंह निकालकर चारों ओर की गतिविधि देखता। रोजी का कार्य तो हमारे साथ दौड़ना ही था, परंतु निक्की इच्छा होने पर ही अपने सुरक्षित स्थान से कूदकर दौड़ता। एक दिन जैसे ही हम खिड़की से नीचे उतरे, वैसे ही निक्की की सतर्क आंखों ने गुलाब की क्यारी के पास घास में एक लंबे काले सांप को देख लिया और वह कूदकर उसके पास पहुंच गया। हमने आश्चर्य से देखा कि निक्की दो पिछले पैरों पर खड़ा होकर सांप को मानो चुनौती दे रहा है और सांप भी हवा में आधा उठकर फुफकार रहा था। निक्की ने सांप को मार डाला समझकर हम सब चीखने पुकारने और सांप को पत्थर मारने लगे। यदि हमारा कोलाहल सुनकर रामा ना आ जाता तो परिणाम कुछ दुखद भी हो सकता था। उस दिन प्रथम बार हमें ज्ञात हुआ कि हमारा बालिश्त भर का निक्की कई फुट लंबे सांप से लड़ सकता है। उन दोनों की लड़ाई मानो पेड़ की हिलती डाल से बिजली का खेल थी। निक्की सांप के सब ओर इतनी तेजी से घूम रहा था कि वह एक भूरे और घूमते हुए धब्बे की तरह लग रहा था। सांप फन पटक रहा था, फुफकार रहा था, उसे अपनी कुंडली में लपेट लेने के लिए आगे पीछे हट बढ़ रहा था। परंतु बिजली की तरह तड़प कर उठने वाले निक्की को पकड़ने में असमर्थ था। वह तेजी से उछल उछल कर सांप के फन के नीचे पैने दांतों से आघात कर रहा था। रामा के कारण इस असमय युद्ध का अंत देखने के लिए तो हम बाहर खड़े ना रह सके, परंतु जब निक्की खिड़की पर आकर बैठा तब हमने झांक कर सांप को कई खंडों में कटा देखा। निक्की के मुंह में विष न लगा हो, इस भय से रामा ने उसके मुंह को पानी में डुबा डुबा कर धोया और फिर दूध दिया। सांप जैसे विषधर को खंड खंड करने की शक्ति रखने पर भी नेवला नितांत निर्विष है। जीव जगत में जो निर्विष है वह विष से मर जाता है, और जिसमें अधिक मारक विष है वह कम मारक वाले को परास्त कर देता है। पर नेवला इसका अपवाद है, वह विष रहित होने पर भी ना सर्प के विष से मरता है और ना संघर्ष में विषधर से परास्त होता है। नेवला सर्प की तुलना में बहुत कोमल और हल्का है। यदि सांप चाहे तो उसे अपनी कुंडली में लपेटकर चूर चूर कर डाले, फन के फुफकार से मूर्छित कर दे, परंतु वह नेवले के फूल से हल्केपन और बिजली जैसी गति से परास्त हो जाता है। नेवला ना उसे दंशन का अवसर देता है, ना व्यूह रचना का अवकाश, और अपनी लघावता के कारण नेवले को ना विशेष अवसर चाहिए ना सुयोग। इसी बीच में बाबूजी ने मुझे शहर के मिशन स्कूल में भर्ती करने का निश्चय किया। इस योजना से तो हमारा समस्त कार्यक्रम ध्वस्त होने की संभावना थी, अतः हम सब अत्यंत दुखी और चिंतित हुए, परंतु विवशता थी। अंत में एक दिन पुस्तक लेकर और शिक्रम यानी बंद गाड़ी, जो उन दिनों नागरिक प्रतिष्ठा की सूचक थी, उसमें बैठकर मुझे जाना पड़ा। निक्की सदा के समान मेरे साथ था, परंतु बाबूजी के आदेश से उसे घर पर ही छोड़ देना आवश्यक हो गया। मिशन स्कूल पहुंचकर देखा कि वह शिक्रम की छत पर बैठकर वहां पहुंच गया है। फिर तो उसे कपड़ों में छिपाकर भीतर ले जाने में मुझे सफलता मिल गई, परंतु कक्षा में उसे मेरे पास देखकर जो कोहराम मचा उसने मुझे स्तंभित और अवाक कर दिया। She has brought a reptile, throw it away, आदि कहकर सिस्टर्स तथा सहपाठिनियां चिल्लाने पुकारने लगी। तब रेप्टाइल का अर्थ ना जानने पर भी मैंने समझ लिया कि वह निक्की के लिए अपमानजनक संबोधन है। मैंने कुछ अप्रसन्न मुद्रा में बार बार कहा कि यह मेरा निक्की है, किसी को काटता नहीं, परंतु कोई उसके साथ बैठने को राजी नहीं हुआ। निरुपाय मैंने उसे फाटक से चार दीवारी तक फैली लता में बैठा तो दिया, परंतु उसके खो जाने की शंका से मेरा मन पढ़ाई लिखाई से विरक्त ही रहा। आने के समय जब निक्की कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठा तब आनंद के मारे मेरे आंसू आ गए। तब से नित्य यही क्रम चलने लगा। प्रतिदिन मुझे पहुंचाने और लेने रामा आता था, और वह पालक के नाते निक्की के प्रति बहुत सदैव था, अतः मार्ग भर निक्की मेरी गोद में बैठकर आता था और मिशन के फाटक की लता में या बाग में घूम घूम कर मेरी पढ़ाई के घंटे बिताता था। छुट्टी होने पर मेरे फाटक पर पहुंचते ही उसका कूदकर मेरे कंधे पर बैठ जाना इतना नियमित और निश्चित था कि उसमें कुछ मिनटों का हेर फेर भी कभी नहीं हुआ। मिशन का वातावरण मेरे लिए घर के वातावरण से भिन्न था। वहां की वेशभूषा भिन्न थी, प्रार्थना भिन्न थी, चित्र मूर्ति आदि भिन्न थे, ईश्वर नाम भी भिन्न था, और इन सबसे बड़ी भिन्नता यह थी कि निक्की का वहां प्रवेश निषिद्ध था। गाथा में अभी आप सुन रहे थे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी निक्की, रोजी और रानी का पहला भाग, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आरती श्रीवास्तव।